सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है कार्यक्रम परिक्रमा।
नमस्कार, हमारे स्टूडियो की घड़ी में शाम के ठीक 4:30 बजे हैं और ये समय है आपके अपने न्यूज मैगजीन कार्यक्रम परिक्रमा का, जिसमें हम आपके लिए लेकर आते हैं वो सारी जानकारी जिनका आपसे है सरोकार। श्रोताओं, आधे घंटे के इस कार्यक्रम में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समाचार होंगे, चलेंगे अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं के पास और जानेंगे कि क्या कुछ खास है उनके पास। इसके अलावा खेल गतिविधियों पर भी रहेगी हमारी नजर और हम करेंगे उन विशिष्ट व्यक्तियों को भी याद जिनकी आज है पुण्यतिथि, जयंती या जन्मदिन। तो श्रोताओं, परिक्रमा के इस अंक के साथ मैं हूं वैष्णवी और मेरे साथ है मेरी सहयोगी शगुन चोपड़ा। शगुन, आपको भी मेरा नमस्कार।
Namaskar Vaishnavi, good day everybody, a very good afternoon to all our listeners. This is our daily news magazine program. This is Parikrama on 100.1 FM with me, Shagun Chopra, and Vaishnavi. And as Vaishnavi told you, our listeners, well, we'll first give you the selection of news that we have, the headlines first, and then our discussion segment Dateline India follows that. We'll also provide you reports, also detailed capsules and business updates as well, and our tributes at the end of the program. So stay tuned. Make sure that you stick around with us till the very end of the program, listeners. We are beginning first with the headlines.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के लिए मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना का शुभारंभ किया। कहा, सरकार द्वारा शुरू की गई कई महिला केंद्रित योजनाओं और कार्यक्रमों से समाज के हर वर्ग को लाभ हुआ है।
Indian Air Force bid farewell to MiG-21 aircraft after 6 decades of service to the nation. Defence Minister Rajnath Singh lauds the aircraft's role in Indo-Pakistan War of 1971.
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली स्थित राष्ट्रपति भवन में प्रतिष्ठित राष्ट्रीय भूविज्ञान पुरस्कार प्रदान किए।
In a surprising turn, US President Donald Trump says he would not allow Israel to annex West Bank.
और एशिया कप क्रिकेट के सुपर फोर के अंतिम मैच में भारत का मुकाबला आज शाम श्रीलंका से।
Listeners, today in our segment Dateline India, we will talk about the 21st Formation Day of National Disaster Management Authority or NDMA. Well, in today's special feature, we'll take you straight to the heart of New Delhi, where the 21st formation day of the NDMA, as I told you, it was marked with a powerful message of resilience, innovation and also national unity. And by failing to prepare, listeners, you are preparing to fail. This is the quote that I am sharing. This quote that I shared with you, listeners, it's by Benjamin Franklin. This holds true essence in today's times and disasters. For centuries, they have tested the strength of civilization, also broken down communities and left behind scars that have lasted for generations. But what if I told you that India, a country once vulnerable to every wave, wind and tremor, is now being seen as a global leader in disaster risk reduction? Yes, listeners, you heard it right. And the credit, it goes to relentless planning, scientific advancements, community awareness and also visionary leadership.
हाल ही में नई दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम में गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने विशेषज्ञों, नीति निर्माताओं, बचाव कर्मियों और छात्रों की एक सभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि जिन चक्रवातों ने कभी हजारों लोगों की जान ले ली थी, अब उनका त्वरित और सुनियोजित ढंग से सामना किया जा रहा है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सटीक पूर्वानुमान और समय पर निकासी के कारण हताहतों की संख्या लगभग शून्य हो गई है।
Right, Vaishnavi. And now let's rewind a bit. 2 decades ago, disasters like the 1999 Odisha super cyclone and the 2001 Gujarat earthquake, it left us reeling. Well, thousands perished and also infrastructure, it crumbled. And there was no centralized authority to deal with such crises. Fast forward to 2005, the National Disaster Management Act was passed and with it came the birth of the NDMA, chaired by none other than the Prime Minister of India himself. The mission for this, it is to create a safer and disaster resilient India.
जी बिल्कुल शगुन, और हमारा लक्ष्य देश को न केवल आपदाओं से निपटने के लिए है बल्कि उन्हें रोकने और कम करने के लिए भी तैयार करने को है। अब हर जिले में आपदा प्रबंधन योजनाएं हैं, स्कूलों में नियमित अभ्यास आयोजित किए जाते हैं, पूर्व चेतावनी प्रणालियां विश्व स्तरीय हो गई हैं, और ये सिर्फ तकनीकी बात नहीं है। आज अगर हम देखें तो तटीय समुदायों को चक्रवातों से निपटने की तैयारी का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। शहरी स्थानीय निकाय बाढ़ प्रबंधन टीम बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं। एनडीआरएफ भारत का विशिष्ट आपदा प्रतिक्रिया बल अपनी दक्षता और साहस के लिए विश्व स्तर पर सम्मानित है। और हाँ, ये भी है कि भारत अब अपनी आपदा प्रबंधन विशेषज्ञता एशिया, अफ्रीका और अन्य देशों के साथ भी साझा कर रहा है।
Yes, we are also glowing global in this particular field. And Prime Minister Narendra Modi's disaster risk reduction agenda, it is guiding not just India, as you are also emphasizing on it, but also global platforms. The PM has emphasized time and again, disaster resilience is not a choice. Well, it's a necessity. And there are some facts that we would share with you listeners. Mm-hmm. And it's about Cyclone Yaas. This happened in 2021. This happening I'm sharing from the year 2021. Over 12 lakh people were evacuated safely with zero major casualties. How great is that? Also, India is one of the first countries to use artificial intelligence and satellite data to assess disaster damage in real time. Wow.
बिल्कुल, और श्रोताओं, पहले हमें कभी पता भी नहीं चलता था कि चक्रवात कब आने वाला है। अब हमें अपने मोबाइल फोन पर चक्रवात का पूर्वानुमान मिलता है। बचाव कार्य के लिए नावों की मदद से लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जाता है। ये हमारे लिए एक बड़ा बदलाव है। हालांकि ये प्रगति उत्साहजनक है, लेकिन आगे की राह आसान नहीं है। जलवायु परिवर्तन प्राकृतिक आपदाओं की आवृत्ति और तीव्रता को लगातार बढ़ा रहा है।
Yes, they are all rising, Vaishnavi. Heat waves, flash floods, urban fires. But if there's one thing the NDMA's 21-year journey shows us, it is this. Preparedness saves lives. Preparedness, it saves lives. As the minister said at the event, the government is committed to building a nation that's not just economically strong, but also disaster resilient. And that requires all of us. Yes, you and me, each and every person, each and every single one of you, schools, businesses, housing societies, farmers, IT workers, everybody, all of us have a role to play in this.
जी बिल्कुल सही कहा शगुन आपने, और उड़ीसा के चक्रवात आश्रयों से लेकर उत्तराखंड की भूस्खलन प्रतिक्रिया टीमों तक, असम की बाढ़ निगरानी प्रणालियों से लेकर राष्ट्रीय COVID-19 टास्क फोर्स तक आपदा प्रबंधन के प्रति भारत का दृष्टिकोण अब बदल रहा है। एनडीएमए की यात्रा साहस, नवाचार और आशा की कहानी है, और इसके 21वें स्थापना दिवस पर आइए न केवल एक संस्था बल्कि एक राष्ट्रीय प्रतिबद्धता का जश्न मनाएं। हमेशा याद रखें, सुरक्षा, तैयारी और दृढ़ता।
Well, rightly said. Minister of State for Home Affairs, Nityanand Rai, he also said today that India has developed advanced early warning systems for cyclones and also lightning, which save thousands of lives across the country every year. Thousands of precious lives, they are saved every year. And while addressing the 21st Formation Day of National Disaster Management Authority in New Delhi, listeners, he pointed out that earlier cyclones, they claimed thousands of lives. Well, we all are aware of that. But today, accurate forecasts and timely evacuations, they have brought human casualties close to zero. And we have a detailed report on this from our correspondent.
As a part of the celebration, NDMA organized a photo exhibition to showcase its two-decade-long journey in disaster risk reduction, highlighting significant milestones, initiatives, and success stories. NDMA is an apex body that is responsible for formulating policies, plans, and guidelines for disaster management to ensure timely and effective response to disasters. The theme of this year's Formation Day is Technology for Risk Reduction for a Safer Nation. This theme underscores the crucial role of technology in minimizing disaster risk, enabling faster response, and empowering communities with innovative solutions. During the event, NDMA also launched several important knowledge products, including guidelines, standard operating procedures, and handbooks on disaster management aimed at strengthening preparedness and response mechanism across the country. Ishani Yadav for Parikrama.
और अब समय है अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं से जानने का कि उनके पास क्या विशेष है।
Well, first, it's about the second day of World Food India 2025 being held in the national capital. Union Food Processing Industries Minister Chirag Paswan today inaugurated the Meghalaya Pavilion. And visiting different stalls, he said that the primary aim of the event, it is to bring different states of the country on one platform so that they can learn from each other and then they can showcase their products. We have a report. Listen in.
Talking to Akashvani News, Pariniti Upadhyay, an exhibitor from Bihar, expressed happiness and said that she is overwhelmed that Food Minister Chirag Paswan visited her stall. Another exhibitor, Arpita Patel from Ahmedabad, shared that the event is a great opportunity to showcase their product on global forum. The four-day event aims to showcase India's strength in food processing, food sustainability, and the production of nutritious and organic food. For Parikrama, Dilnashi Arzu, Delhi.
और अब विजयपुरम की ओर रुख करते हैं. तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक सेवा पखवाड़ा मनाया जा रहा है. सेवा पखवाड़ा मनाने का मुख्य उद्देश्य समाज में सेवा, सहयोग और जागरूकता की भावना को बढ़ाना है. इसे अलग अलग क्षेत्रों और वर्गों तक पहुंचाकर देश भर में एक सामूहिक जन आंदोलन का रूप देना ही इसका मकसद है. एक रिपोर्ट.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक सेवा पखवाड़ा मनाया जा रहा है. सेवा पखवाड़ा मनाने का मुख्य उद्देश्य समाज में सेवा, सहयोग और जागरूकता की भावना को बढ़ाना है. इसे अलग अलग क्षेत्रों और वर्गों तक पहुंचाकर देश भर में एक सामूहिक जन आंदोलन का रूप देना ही इसका मकसद है. सेवा ही संगठन की भावना को हर नागरिक तक पहुंचाना, समाज के कमजोर वर्गों तक सहायता पहुंचाना और उन्हें मुख्य धारा से जोड़ना, स्वच्छता, स्वास्थ्य, पोषण और रक्तदान जैसे कार्यों को जन भागीदारी के साथ सफल बनाना, गांव-गांव और शहर-शहर में लोगों को सेवा और स्वच्छता का महत्व समझाना, साथ ही सामुदायिक एकता और सबका साथ सबका विकास के मंत्र को मजबूत करना, यह दिखाना कि राष्ट्र निर्माण केवल सरकार का कार्य नहीं बल्कि हर नागरिक का कर्तव्य है. द्वीप समूह में इस अवसर पर अनेक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया. स्वच्छता अभियान चलाकर समुद्र तटों, बाजारों और सार्वजनिक स्थलों को साफ किया गया. स्वास्थ्य शिविर लगाकर ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण और औषधियों का वितरण, रक्तदान शिविर आयोजित किए गए जिसमें युवाओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया. दीपों की पंचायतों ने मिलकर पेयजल एवं स्वच्छता जागरूकता रैलियां निकाली. महिला समूहों ने स्वास्थ्य एवं पोषण पर विशेष गोष्ठियां की. किसानों और मछुआरों के लिए कृषि एवं मत्स्य पालन संबंधी कार्यशालाएं आयोजित हुई. युवाओं को डिजिटल साक्षरता और कौशल विकास से जोड़ने हेतु प्रशिक्षण शिविर लगाए गए. वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांगजनों के बीच सहायता सामग्री वितरण भी किया गया. दीपों में सेवा पखवाड़ा ने न केवल स्वच्छता का संदेश दिया बल्कि सामुदायिक एकता को भी मजबूत किया. भाजपा द्वारा दीप समूह में 21 सितंबर को श्री विजयपुरम में एक विशाल मोदी विकास मैराथन का आयोजन भी किया गया. इस प्रकार अंडमान निकोबार दीप समूह ने सेवा पखवाड़ा को एक जन जन का उत्सव बना दिया. परिक्रमा के लिए आकाशवाणी श्री विजयपुरम से संपादक अंकित कुलश्रेष्ठ के साथ मैं अनामिका सेन गुप्ता.
Listeners, now we'll take you to Kerala. Well, customers are giving more importance to electric vehicles as concerns on carbon neutrality is increasing day by day. We have a report on this. Listen in.
Kerala has set a target of achieving carbon neutrality by 2050, with electric vehicles playing a key role in this mission. The Shunya EV Conclave, held in the state capital Thiruvananthapuram, aimed to accelerate this effort through public-private partnerships. The conclave, jointly organized by the Kerala State Electricity Board and Niti Aayog, discussed various measures to promote clean energy in the state. Currently, 14.9% of the vehicles registered in Kerala are electric. The state has already launched a project to supply electricity from vehicles to grid, while awareness campaigns on clean energy are also being carried out among students. In the meantime, Kerala State Electricity Board is focusing on expanding charging infrastructure, particularly in rural and hilly regions. At present, around 440 public fast charging stations are operational in the state, with plans to extend them further, especially near tourism hubs and remote areas. Stakeholders have also suggested incentives, including exemption from parking fees for electric vehicles and simplified procedures for setting up charging stations. Smithy M. Palluruthi, Akashvani News, Thiruvananthapuram.
और अब देहरादून की ओर रुख करते हैं, तो केंद्र सरकार ने देश भर में परिवारों और महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान की शुरुआत की है। ये अभियान स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय और महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की एक ऐतिहासिक पहल है, जिसका उद्देश्य पूरे भारत में महिलाओं और बच्चों के लिए स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करना है। स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान विकसित भारत 2047 की दिशा में भारत की यात्रा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जो महिलाओं के स्वास्थ्य और परिवार के सशक्तिकरण को राष्ट्रीय विकास के केंद्र में रखता है। 17 सितंबर से शुरू हुआ ये महाअभियान उत्तराखंड में भी पूरे जोर शोर से जारी है। उत्तराखंड से हमारी राज्य संवाददाता साक्षी सिंह ने बताया कि प्रदेश में ये अभियान आगामी 2 अक्टूबर तक व्यापक स्तर पर चलाया जा रहा है।
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत उत्तराखंड में आयोजित स्वस्थ नारी सशक्त परिवार महाअभियान ने कम समय में व्यापक उपलब्धियां दर्ज की है। यह अभियान महिलाओं की जरूरतों के अनुरूप व्यापक स्वास्थ्य जांच और सेवाएं प्रदान करने में उनके स्वास्थ्य को प्राथमिकता देता है। प्रदेश में चल रहे स्वास्थ्य शिविरों और विशेष स्वास्थ्य सेवाओं की श्रृंखला में अब तक लाखों लोग लाभान्वित हुए हैं। 17 सितंबर से लगातार आयोजित किए जा रहे स्वास्थ्य शिविरों के जरिए लोगों को मुफ्त जांच, परामर्श और उपचार की सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। सरकारी आंकड़ों के अनुसार प्रदेश भर में अब तक कुल 10,672 स्वास्थ्य शिविर लगाए गए हैं। इन शिविरों के जरिए 5,45,233 लोगों तक स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाई गई हैं, जिनमें पुरुषों की संख्या लगभग 2,00,000 जबकि महिलाओं की संख्या लगभग 3,00,000 रही है। राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान को उत्तराखंड की महिलाओं और परिवारों के स्वास्थ्य की दिशा में ऐतिहासिक पहल बताया है। उन्होंने कहा है कि सरकार का संकल्प है कि हर जिले हर गांव तक गुणवत्तापूर्ण और निःशुल्क स्वास्थ्य सेवाएं समय पर पहुंचें। स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार पर श्री धामी ने कहा कि यह केवल स्वास्थ्य कार्यक्रम नहीं बल्कि जन भागीदारी की एक सशक्त मिसाल है। इस दौरान मुख्यमंत्री लोगों से अपील कर रहे हैं कि वे नजदीकी स्वास्थ्य शिविरों में जाकर जांच, परामर्श और उपचार अवश्य प्राप्त करें। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत का कहना है कि यह महाअभियान महिलाओं को न सिर्फ स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करा रहा है बल्कि उन्हें जागरूक और सशक्त भी बना रहा है। उन्होंने कहा है कि सरकार इस कार्यक्रम को घर घर, गांव गांव तक पहुंचा रही है ताकि कोई भी व्यक्ति स्वास्थ्य सुविधाओं से वंचित न रहे। डॉक्टर रावत ने कहा है कि अभियान आने वाले समय में उत्तराखंड को मातृ शिशु स्वास्थ्य के क्षेत्र में आदर्श राज्य बनाएगा। परिक्रमा के लिए आकाशवाणी देहरादून से साक्षी सिंह।
आप चलते हैं खेल के मैदान में और जानते हैं वहां की हलचल। तो दुबई में एशिया कप क्रिकेट के सुपर फोर के अंतिम मैच में आज शाम भारत का सामना श्रीलंका से होगा। ये मैच रात 8 बजे से खेला जाएगा। कल पाकिस्तान ने बांग्लादेश को 11 रन से हरा दिया। फाइनल में रविवार को भारत का मुकाबला पाकिस्तान से होगा।
Yes, and now I'll be telling you about Para Archery World Championships in Gwangju, South Korea, where India has been assured of at least 3 medals. And three Indian players, they will be looking for gold in the compound open category Paralympic. Bronze medalist Rakesh Kumar and newcomer Toman Kumar, they advanced to the gold medal match in the men's compound open individual event. Also, teenage sensation Sheetal Devi also stormed into the women's compound final today. Now, I'll provide you the business updates, listeners. Benchmark domestic equity indices, Sensex and Nifty, opened lower and fell for the 6th straight session on the last day of trade for the week. Indices extended their initial losses in the later half of the day to end as 0.9% down. The Sensex shed 733 points or 0.9% to close at 80,426, while Nifty dropped 236 points or 0.95% to settle at 24,655.
अब हम करेंगे याद महान स्वतंत्रता सेनानियों को और बात करेंगे उन महान व्यक्तियों की जिनकी आज है पुण्यतिथि, जयंती या जन्मदिन।
We remember one of the towering figures of India's Renaissance in the 19th century, Ishwar Chandra Vidyasagar, who was born on this day in 1820. Through his multiple contributions to people and society, Ishwar Chandra left an indelible mark in the annals of Indian history.
He was a great social reformer, anti-colonial activist and philanthropist, a great educated author. Vidyasagar is considered as the father of Bengali prose. He significantly rationalized, simplified and modernized the Bengali alphabet using woodcut type.
Born at Birshingho village, now a part of Midnapur district, Vidyasagar was a brilliant student from childhood. His quest for knowledge was so intense that he used to study under a street light, as it was not possible for his family to afford a gas lamp at home. He cleared all the examinations with excellence and in quick succession.
In 1839, Ishwar Chandra Vidyasagar cleared the Sanskrit law examination and joined Fort William College of Kolkata as head of the Sanskrit department. Later, he became principal of the same college. He excelled so well in his undergraduate studies of Sanskrit and philosophy that his college gave him the honorific title Vidyasagar, Ocean of Knowledge.
Vidyasagar championed the upliftment of the status of women, especially widows in Bengal. He was particularly moved by the plight of child widows who were often ill-treated and tortured. Vidyasagar also fought against the system of polygamy. Despite strong opposition of the then society, he ran a revolutionary agitation for women's education and rights to remarriage for leading a normal life.
He petitioned the Legislative Council for Hindu widow remarriage despite severe opposition and a counter-application by Dharma Sabha, which had nearly four times as many signatures. Finally, Lord Dalhousie personally finalized the bill and Hindu Widow Remarriage Act 1856 was passed.
He was made the Special Inspector of Schools in 1855. He travelled around Bengal and visited schools. During his travels, he witnessed the pathetic conditions in which people lived. Superstitions and blind faith were prevalent due to lack of education. This motivated him to establish schools all over Bengal to spread the light of education. Within 2 months, he arranged for 20 schools to be built. In order to encourage gender equality, he also established 30 schools exclusively for girls.
In 1873, Vidyasagar came to Karmatar, a sleepy hamlet now in Jamtara district of Jharkhand, and spent more than 18 years of his life there. He set up a girls' school and a night school for adults on the premises of his house, which he called Nandan Kanan. He also opened a free homeopathy clinic to provide some medical care to these unprivileged tribal people.
Nandan Kanan was later sold. However, the Bengali Association in Bihar in 1974 purchased it from money collected by house-to-house contributions of 1 rupee each. The girls' school has been restarted, named after Vidyasagar. The free homeopathy clinic is still serving the local population. The house of Vidyasagar has been maintained in its original shape.
The government of Jharkhand on 26 September 2019 named Karmatar block as Ishwar Chandra Vidyasagar block as a mark of respect on the birth anniversary of the great social reformer. Indian Post issued stamps featuring Vidyasagar in 1970 and 1998.
The great social reformer Ishwar Chandra Vidyasagar passed away in Kolkata on the 29th of July, 1891. In the words of one of the greatest Bengali poets, Michael Madhusudan Datta, Vidyasagar has the genius and wisdom of an ancient sage, the energy of an Englishman, and the heart of a Bengali mother. We salute this great Indian.
आज मनमोहन डॉक्टर मनमोहन सिंह का जन्मदिन है. वे भारत के एक प्रख्यात अर्थशास्त्री, शिक्षाविद और राजनेता है. अर्थशास्त्र में उनकी गहरी समझ और विद्वता के कारण वे विश्व स्तर पर पहचाने गए. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की है. सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने राष्ट्र निर्माण में उनके योगदान को याद किया.
Yes, Prime Minister Narendra Modi paid tribute to former Prime Minister Dr. Manmohan Singh on his 93rd birth anniversary, acknowledging his long years of service in public life. Listeners, today we're also remembering Robert Palmer, the singer and songwriter known for his powerful and soulful voice, also his elegance and the way he combined soul, funk, jazz, pop and blues, and his songs, they are very famous. Let's listen to one of his songs. Listeners, let me also talk about another musician, a composer and pianist now, George Gershwin. Well, his compositions, they spanned jazz, popular and classical music, and among his best known works are Fascinating Rhythm and also Rhapsody in Blue. I have another song. Let's listen into that.
आज हम याद कर रहे हैं उदय शंकर को, जो भारतीय नृत्य जगत की वे महान शख्सियत हैं जिन्होंने भारतीय अर्थशास्त्रीय लोक और आधुनिक नृत्यों को मिलाकर एक नया आयाम दिया। उन्होंने पश्चिमी मंच तकनीकों को भारतीय नृत्य की परंपराओं के साथ जोड़कर एक अनोखी शैली विकसित की।
Listeners, today we are also remembering Hemant Kumar Mukhopadhyay. Well, Hemant Mukherjee and Hemant Kumar, he has been popularly known and professionally known as that as well. And he has been a musical director and a playback singer, primarily sang in Bengali and Hindi, and also popularly known as the voice of God. Well, he was the artist in Bengali and Hindi film music, Rabindra Sangeet and various other genres. I have selected a beautiful song which you like, listeners. Let's listen in.
ख्वाब चुन रही है रात, बेकरार है। जरा नजरों से कह दो जी, निशाना चूक ना जाए। जरा नजरों से कह दो जी, मजा जब है तुम्हारी हर अदा का दिल ही कहलाए। जरा नजरों है अपना दिल तो आवारा, न जाने किस पे आएगा। है अपना दिल तो आवारा, न जाने किस पे आएगा।
आज 26 सितंबर है और आज एक ऐसी शख्सियत का जन्मदिन है जिन्होंने अपनी मुस्कान, बेबाक अंदाज और बेमिसाल अभिनय से हिंदी सिनेमा को एक नया आयाम दिया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं देवानंद की, जिन्हें लोग प्यार से देव साहब कहते थे। वो ना सिर्फ एक अभिनेता थे बल्कि एक सपने बुनने वाले, कहानियां कहने वाले और सिनेमा के उस जादू को जीवंत करने वाले रचनाकार थे। देवानंद का पूरा नाम धर्मदेव किशोरीमल आनंद था। देव साहब की स्कार्फ, टोपी और थोड़ा झुका हुआ सिर, ये उनका ट्रेडमार्क था।
तेरे ही सपने लेकर के सोया, तेरी ही यादों में जागा, तेरे ख्यालों में उलझा रहा हूँ जैसे कि माला में धागा।
Well, we are remembering the evergreen Devanand on his birth anniversary, the true icon of Indian cinema. Well, his journey from Hum Ek Hai to Guide and beyond, it spanned over 6 decades, leaving an everlasting mark on Bollywood.
Main zindagi ka saath nibhata chala gaya, फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ा।
देव साहब को 2001 में पद्मभूषण और 2002 में दादा साहेब फाल्के अवार्ड से सम्मानित किया गया। वे सिर्फ एक अभिनेता नहीं बल्कि सिनेमा को नई दिशा देने वाले कलाकार थे।
मेरे सपने अब एक रंग है, वो जहाँ भी ले जाए राहे हम संग हैं। ओ तेरे मेरे सपने अब एक रंग है, वो जहाँ भी ले जाए राहे हम
संग
मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया.
He is regarded as one of the most influential actors in the history of Indian cinema, and he'll ever be in our memories, and the artist, the performances, the voice will be there with us forever. Listeners, now it's time to say goodbye. We have to leave. We'll make sure that you stick around with us because we have the bulletins following up. With that, Namaskar.